ندعو ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبعه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخره حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اس روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شراب پیتا ہے پھر اس سے توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ آخرت میں شراب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ شراب سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو احادیث ہیں ان کو نقل فرما رہے ہیں، جو وعید یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شراب پینے والے کو آخرت میں شراب سے محروم رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ دنیا میں شراب پیے اور توبہ نہ کرے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرابی کی توبہ بھی قبول ہوگی اور آخرت میں شراب سے وہ محروم نہیں ہوگا، بلکہ شراب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضیافت فرمائیں۔ یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں شراب پی لے توبہ کیے بغیر مر جائے تو حدیث میں ہے کہ آخرت میں وہ محروم ہو جائے گا، تو اب آخرت میں محرومی کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ شراب کا پینا یہ گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کرنے والے کو تو معافی ملے گی قیامت میں۔ معتزلہ کا نظریہ تو نہیں ہے، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ بندہ کافر اور مشرک ہوگا تو اس کی معافی اور بخشش نہیں ہوگی، لیکن گناہ کبیرہ کرنے والے کی بخشش ہو جائے گی۔ خوارج اور معتزلہ یہ کہا کرتے تھے کہ گناہ کبیرہ کرنے پر بھی آدمی گناہ کبیرہ کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ جتنے لوگ آج کے زمانے میں اگر دیکھیں گے آپ، سب کے سب کسی نہ کسی درجے میں کافر ہوتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں مشرک ہیں، ان کے یہاں تو ایمان سے خارج جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ نہیں کیا ہے تو آخرت میں محروم ہو جائے گا، تو پھر اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ پھر کیونکہ ہر آدمی کی توبہ گناہ کبیرہ کرنے والے کی تو مغفرت ہو جاتی ہے قیامت میں سزا دینے کے بعد یا عذاب دینے کے بعد۔ تو کئی مطلب ہیں اس کے۔ ایک مطلب علماء نے اس کا یہ بیان فرمایا کہ ایسے شخص کو جنت میں شرابی نہیں ملے گی، یعنی جنت میں تو چلا جائے گا، جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کی نعمت سے جو ہے نا وہ محروم رکھیں گے اس کو۔ دنیا میں اس کی سزا یہ ہے، اللہ نے بتا دیا تھا دنیا کے اندر کہ پینا ہے پھر وہاں محرومی ہو جائے گی، تو واقعتا اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دیں گے۔ بعض علماء کا نظریہ یہی ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کی وہاں کی شراب میں بہت بڑا فرق ہے، کہیں وہاں نہ ملے تو ایسی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی نعمت نہیں ہے کہ چھوٹ جائے۔ شراب کی تعریف کی ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں، جنت میں چار مہرے ہیں، ان میں سے ایک مہر شراب کی بھی ہے، جس سے پئیں گے، جس کے برتنوں کا اللہ نے ذکر فرمایا اور جس کے مزے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہاں کی شرابوں کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ چکر نہیں آئے گی پینے کے بعد، دماغ میں خلل نہیں آئے گا، فلاں فلاں پیٹ میں درد نہیں ہوگا، بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی۔ تو سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں محرومی کر دیں گے جنت میں جانے کے باوجود۔ لیکن بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد وہاں کی کسی نعمت سے آدمی کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جنت میں تو ہر آدمی کی ہر خواہش پوری ہونے والی ہے، وہاں جب آدمی جائے گا تو اس کی شرابی یعنی وہ بھی خواہش ہوگی، جنت کی نعمتوں میں وہ بھی ہے، محروم نہیں ہوگا، بلکہ بطور سزا کے اللہ نے ذکر فرمایا، بطور وعید کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی۔ گناہ یعنی یہ اتنی قبیح چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ اگر اس کی سزا اللہ پاک ہمیشہ کے لیے نافذ کرنا چاہے تو جنت جیسی جگہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے محروم کر دیں، اتنی دنیا کے اندر اس کی قباحت ہے۔ تو پینے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ بھائی ایسا شخص آخرت میں بھی عذاب کا مستحق ہے اور شراب کے نہ دیے جانے کا، جنت میں شراب کے نہ دیے جانے کا مستحق ہے، یہاں پر پینا اتنی بری چیز ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور بھی اس کے مطلب ہیں لیکن سیدھا سا مفہوم اس حدیث پاک کا یہی ہے۔ यहाँ एक बात है जो समझने की है, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर खबर का जिक्र फरमाया, मन शरीबल खबरा फी दुनिया, जो सब दुनिया में खबर पिएगा तो उसे तौबा नहीं करेगा तो वह आखिरत में महरूम हो जाएगा। और कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने इसी लफ्ज़ का इस्तेमाल फरमाया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अनसाबु वल अज़लामु रिजसु मिन अमल शैतान, ये खबर है, जुआ है, फलाह है, फलाह है, शैतानी कामों में से इससे बचो। तो खबर कहते किसको हैं? और क्या हमारे यहाँ अब जो शराबें पाई जाती हैं, जो पी जा रही हैं, दी जाती हैं, वो खबर है या नहीं है? जिसका कुरान पाक में खबर का जिक्र किया गया वो वही है या नहीं है? तो जहन में रहना चाहिए कि भाई जितनी ये जो शराबें हैं बुनियादी तौर पर इनकी तीन किस्में हैं। पहली किस्म है खमर, जिसका कुरान पाक में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अनसाबु वल अज़लाम। और खमर असल में जो कही जाती है ये अंगूर के कच्चे शीरे से बनाई जाने वाली शराब होती है। अंगूर को पकाए बगैर पानी में डाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उसमें झाग पैदा हो जाती है, फिर नशा पैदा हो जाता है, तेज़ी उसके अंदर आ जाती है। तो अंगूर को डालकर बगैर पकाए जो शराब बनाई जाती है वो है खमर, वो सबसे ख़तरनाक है, जिसका कुरान पाक ने अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया। और इसका हुक्म ये है, इस शराब का हुक्म ये है कि इसका यानी ये नजिस भी है, पीना गुनाह कबीरा भी है। एक कतरा अगर पी ले आदमी के ऊपर तो हद लगाई जाएगी, 80 कोड़े मारे जाएंगे अगर एक कतरा भी इसको भी पी लेगा तो, हद का हुक्म है उसके लिए। और कपड़े पर एक कतरा लग जाए तो फिर उसका धोना भी ज़रूरी है, बगैर धोए आप यानी अगर एक दिरहम की मकदार से कम है तो नमाज उसके साथ पढ़ना मकरूह है, एक दिरहम की मकदार अगर उससे ज़्यादा है तो फिर नमाज नहीं होगी। ये अंगूर के कच्चे शीरे से बनाई जाने वाली शराब का हुक्म है, जिसको हम खमर कहते हैं, जिसको कुरान हदीस में खमर का नाम दिया गया। और इसको हलाल समझने वाला काफिर भी है, क्योंकि कुरान के हुक्म का इनकार करने वाला है। शराब की जो दूसरी किस्म है या अल्कोहल की जो दूसरी किस्म होती है वो है अंगूर को पकाकर बनाया जाए, यानी पकाकर उसको शराब बनाई जाए, या खजूर को जो है ना खजूर के ज़रिए जो है ना शराब बनाई जाए, या फिर किशमिश के ज़रिए शराब बनाई जाए। ये तीन किस्में वो होती हैं जो अल्कोहल में दूसरे नंबर पर आती हैं। इनका क्या हुक्म है? तो हुक्म के अतबार से इन्हों भी सेम पहली वाली के हुक्म में है, थोड़ा सा फर्क पाया जाता है। इनका हुक्म ये है कि ये भी पीना जायज़ नहीं है आदमी के लिए, गुनाह कबीरा है पीना, लेकिन इसके पीने पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हद नहीं लगाई जाएगी आदमी को, और इसका इनकार करने वाला काफिर नहीं होगा। ये है, पीना तो गुनाह कबीरा है, यानी दलाइल के अतबार से फ़र्क पाया जाता है, क्योंकि खमर का इतलाक जो कुरान में किया गया है तो उससे मुराद वही शराब है जो अंगूर की बनाई जाती थी, और बकिया जो शराबों पर खमर का इतलाक है वो मजाजन है। तो इनको जो खमर कहा जाता है या जो शराब कहा जाता है वो मजाजन कहा जाता है, तो इसलिए इसका जो मुनकर होगा, इसको हलाल समझने वाला जो होगा वो काफिर नहीं होगा, फासिक और गुनहगार ज़रूर होगा। उसके ऊपर हद नहीं लगाई जाएगी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। और दूसरा ये है कि यानी हुक्म में इसकी तफ़ीफ़ है कि उसको हलाल समझने वाला काफिर नहीं होगा, लेकिन पीना दोनों का गुनाह कबीरा है। तीसरी किस्म जो अल्कोहल की होती है वो है इन चार चीज़ों के अलावा जिन चीज़ों से अल्कोहल बनाई जाए, अंगूर का कच्चा शीरा, या अंगूर को पकाकर शराब बनाई जाए, या खजूर के अलावा किसी और चीज़ से शराब बनाई जाए, या फिर किशमिश के अलावा किसी और चीज़ से बनाई जाए। ये अल्कोहल की तीसरी किस्म है जो आज हमारे माशरे में पाई जाती है। उमूमन जो यहाँ शराब बनती है तो वो यानी गन्ने से बनती है, या चावल से बनती है, या फ्रूट से बनती है, ज़मीन से उगने वाली किसी चीज़ से बनती है, या फिर जो है केमिकलों वगैरह के ज़रिए आज के ज़माने में अल्कोहल यानी बनाया जाता है। तो इसका हुक्म अलग है, इसका दर्जा थोड़ा सा कम है, आया इसका इस्तेमाल करना शरण जायज़ या ना जाए। तो इस बारे में तफसील ये है कि इन चार चीज़ों से बनाई गई शराब का पीना जायज़ नहीं है, थोड़ी मकदार भी ज़्यादा मकदार भी, जो अभी मैंने जिक्र किया है, थोड़ी मकदार में ही पीना जायज़ नहीं है, ज़्यादा मकदार में पीना भी जायज़ नहीं है, और इनका खारजी इस्तेमाल ये भी जायज़ नहीं है। यानी परफ्यूम के तौर पर जो है अगर कोई अल्कोहल इस तरह का बनाया गया है या कोई परफ्यूम इस तरह का बनाया गया है जिसमें इन चार चीज़ों से बनाई गई शराब मिलाई गई है, अल्कोहल इस तरह का है जो मिलाया गया है, तो फिर ये ना लगा सकते हैं ना खा सकते हैं, ना दाखिली इस्तेमाल इसका जायज़ है ना खारजी इस्तेमाल इसका जायज़ है। बकिया इन चार के अलावा जो केमिकल के ज़रिए अल्कोहल होता है, या फ्रूट्स के ज़रिए अल्कोहल बनाया जाता है, या सब्ज़ियों के ज़रिए, या किसी और चीज़ के ज़रिए, टमाटरों के ज़रिए, आलूओं के ज़रिए, चावल के ज़रिए, इस तरह की चीज़ों से भी अल्कोहल बनाया जाता है, तो इससे बनाया जाने वाला जो अल्कोहल होता है इसका दाखिली और खारजी इस्तेमाल दोनों जायज़ है। दाखिली और खारजी का मतलब, दाखिली का इस्तेमाल का मतलब यह है कि भाई अगर ये खाई जाने वाली चीज़ों में मिलाया गया तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, اس پر شراب کا حکم نہیں ہے. اصل میں یہ بھی مسئلہ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اصلا امام محمد رحمۃ اللہ اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ یہ بھی جائز نہیں. مسئلہ تو یہ ہے تیسری قسم کی شراب کے بارے میں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ اس الکحل میں یا اس شراب کے اندر اتنی مقدار کا پینا کہ جس سے نشہ نہ ہو یا اتنی مقدار کا استعمال کرنا کہ جس سے نشہ نہ ہو وہ جائز. یہ تو موجودہ زمانے میں ضرورت کے پیش نظر اور لوگوں کے ان معاملات میں پھنس جانے کی وجہ سے ابتلاء عام عموم پر بلوا کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے. علماء نے یہ تخفیف اور یہ گنجائش رکھی ہے کہ ان چار چیزوں کے علاوہ جن سے بھی یعنی جو الکحل بنایا جاتا ہے اور جو ملایا جاتا ہے تو اس کا استعمال کرنا آدمی کے لیے جائز ہے, چاہے وہ کھائی جانے والی چیزوں میں ملایا جائے یا لگائی جانے والی چیزوں میں ملایا جائے. یہ تفصیل ہے اس کی. دلیل کیا ہے اس کی؟ تو خیر یہ دلائل اپنی جگہ الگ ہیں, لیکن بعض احادیث سے اس مضمون کی تائید بھی ہوتی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمن کو جانے لگے, حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی غالباً تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہاں جو کی شراب ہوتی ہے اور وہاں پر جو ہے نا گیہوں کی شراب ہوتی ہے, کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اشربا ولا تسکرا, یعنی پی لو لیکن نشہ مت کرو اس سے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہے تو وہ شراب اور وہ خمر نہیں ہے, انگور سے اور کھجور سے بنائی جانے والی شراب نہیں ہے, وہ دوسری چیزوں سے بنائی جانے والی شراب ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ پینے کی گنجائش ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ نشہ مت کیا جائے اس کے اندر, نشہ نہ کیا جائے. تو اس سے امام ابو حنیفہ, اس طرح کی اور روایات ہیں بعض شرابوں کے بارے میں, امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات ملتی ہے, انہوں نے چکھا تھا اس کو, تو وہ کھجور اور انگور کے علاوہ بنائی گئی تھی. تو اگر کھجور اور انگور کے علاوہ جو شراب بنائی گئی ہے حلال ہی نہیں حرام ہی حرام ہوتی تو اس کو چکھتے نہیں. پھر اسے پتا چلا کہ بھائی اس کی جو قلیل مقدار ہوتی ہے جس سے نشان ہو اس کو استعمال کرنا جائز ہے ضرورت کے پیچھے. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس الکحل کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ بھائی یہ اگر نشہ نہیں آتا ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز. تو اب ہمارے پاس جو ایسی علموں میں جو ملائی جاتی ہے چیزیں کاسمیٹکس میں جو چیزیں ہیں جو الکحل ملائی جاتی ہیں وہ اسی نوعیت کی ہوتی ہے, وہ جواز کا جو حکم دیا جاتا ہے وہ اسی نوعیت کا ہے. مفتی عثمانی صاحب دامت اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے انہوں نے, اور اس پر بحث کر کے یہ بات لکھی ہے کہ موجودہ زمانے میں لوگوں کی ضرورت اور لوگوں کے احوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے گنجائش اس کی ہے کہ اس الکحل کو جن چیزوں میں ملایا جاتا ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہے. آئس کریم ملایا جائے تو کھانا جائز, چاکلیٹوں میں بھی اس طرح کی الکحل ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے, پرفیوم میں جو الکحل ہوتا ہے وہ اسی قسم کا ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا جائز, دواؤں میں جو ہے نا جو الکحل ہوتا ہے وہ اسی قسم کا ہوتا ہے, ان چار چیزوں کے علاوہ کا. یہاں یہ ذہن میں رکھے کہ انگور اور کھجور اور کشمش سے بنائی جانے والی جو شراب ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز میں ملائی جائے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں, نہ کھائی جانے والی چیز میں استعمال کرنا جائز ہے, نہ لگائی جانے والی چیز میں, نہ پرفیوموں میں اس کا استعمال جائز ہے, نہ جو ہے کپڑوں پر اگر کوئی کریم وغیرہ لگایا جا رہا تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں. تو اس کا حکم بہت سخت ہے جس کو ہم خمر کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو شراب ہوتی ہے جس کے بارے میں یعنی جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے ان چار چیزوں کے علاوہ جس سے جو الکحل یا جو شراب بنائی جائے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے, اصل میں بعض روایات ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو مسکرین خمر, ہر نشہ آور چیز وہ شراب ہوتی ہے وہ خمر ہے اس سے بچو. اور بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا کہ ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام, وہ شراب یا وہ الکحل جس کا زیادہ پینے سے نشہ آ جائے تو اس کی جو کم مقدار ہے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. اس بنیاد پر جمہور علماء کا ابن ثلاثہ کا مذہب یہی ہے کہ یہ تیسری قسم کے الکحل بھی جائز نہیں ہے. لیکن جیسا کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل کی روایت ذکر کی ہے, تو عمر کی روایت ذکر کی ہے, اس طرح کی اور بھی دو چار روایتیں ملتی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکم میں تخفیف ہے. وہ تخفیف اس وجہ سے دی گئی ہے کہ شریعت کا ایک مزاج یہ ہے کہ جس چیز میں عموم بلوا ہوتا ہے, جس چیز میں لوگ بہت زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر اس حکم میں تخفیف ہو جاتی ہے. اس کی مثالیں خود حدیث میں موجود ہیں. اسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی ہے, بلی کے حکم میں تخفیف فرمائی. بلی تو درندہ ہے, حدیث میں خود فرمایا کہ الہرۃ سبعون, بلی ایک درندہ ہے. اور درندوں کے بارے میں خود یہ ارشاد موجود ہے اور حدیث میں موجود ہیں کہ بھائی درندہ تو نجس ہوتا ہے, اس کا تھوک نجس ہوتا ہے, اس کا خون نجس ہوتا ہے, وہ برتن میں منہ ڈال دے اور پانی وغیرہ موجود ہو تو برتن ناپاک ہو جائے گا, پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن بلی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم بالطوافات, یہ فرمایا کہ بھائی یہ تمہارے گھروں میں گھومنے والے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے, اس سے بچنا مشکل ہے, اس لیے اس کے حکم میں شریعت نے تخفیف کر رکھی ہے. यानी अब हमारे यहाँ जो घर हैं यहाँ तो कैद होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अरबों में जो पहले जमाने में घर होते थे तो उसमें तो पूरे कबीले में घूम सकते थे, अब एक घर से दूसरे घर बिल्लियों से तो बचना नामुमकिन था। ये आदमी ठीक है दरवाजा बंद कर दे लेकिन ऊपर से छलांग कर कूद कर वो आ जाती थी तो बचना नामुमकिन था, और हर घर में बिल्ली दाखिल हो जाती थी, हर घर में इस तरह की चीजें दाखिल हो जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो बचना दुश्वार है, और लोगों को ये कह दिया जाए कि बिल्ली का झूठा नापाक और नजी से बचो उससे, तो हर दिन जो है ना उनका दूध नापाक हो जाएगा, हर दिन उनका पानी नापाक हो जाएगा, कहीं भी मुंह मुंह डाल देगी। बल्कि बात रिवायतों में यह है कि भाई आकर वो कभी हलीम बनाई थी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तो बनाकर खा ली उसमें से। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीज़ों में अब आदमी कितना ढांप कर रखे और कितना बचा कर रखे। शरीयत ने हुक्म में तफ़ीफ़ कर दी है कि भाई चूंकि इब्तलाए आम है, लोगों की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि इससे बचना दुश्वार है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई हुक्म दे दिया जाए मना कर दिया जाए तो बड़ा मसला हो जाएगा, हुक्म में तफ़ीफ़ कर दी तो फरमाया कि भाई बिल्ली का झूठा नजीस नहीं है उसका इस्तेमाल करो। और बाद रिवायत में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू भी फरमाया उसके झूठे से, और बाद रिवायत में है कि बिल्ली ने एक जगह से खा लिया था तो आपने खुद हज़रत आयशा को वहाँ से खिलाया और खुद भी खाया। तो ये मिजाज असल में ये बता रहा हूँ कि इस्लाम का मिजाज और शरीयत का मिजाज ये है कि लोगों में तंगी नहीं, दीन में तंगी नहीं है, लोगों पर तंगी मत पैदा करो, उनके लिए आसानियाँ पैदा करो, हरज जो है ना उनको नहीं होना चाहिए। तो उलमा अच्छा इस तरह की कई मिसालें मिलती हैं हदीसों के अंदर, जैसे बैए सलम है। बैए सलम क्या होती है? बैए सलम असल में ये होती है कि यानी काश्तकारों से किसानों से आदमी बैए कर लेता है कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ आप 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद मुझे इतने टन गेहूँ दे देना, इतने टन चावल दे देना। अब यहाँ उसूली एतबार से इस तरह की बैए करना शरान जायज़ नहीं है। वजह क्या है? वजह उसकी यह है कि ये मादूम शय की बैह है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सरी ऐलान फरमाया कि भाई मादूम चीज़ों की यानी जो चीज़ मौजूद नहीं है फिलहाल उसकी बैह नहीं की जाए, इतना करे आदमी। अच्छा इसी बुनियाद पर यह मसला निकलता है कि फिर इतनी ड्रॉप शिपिंग्स की जो जितनी कारोबार चल रहे हैं ऑनलाइन जो होते हैं ना, तो बहुत से लोग वो होते हैं कि ऑनलाइन ही चीज़ें खरीद लेते हैं, ऑनलाइन ही भेज देते हैं, उनके पास चीज़ ही नहीं होती है। मैं आपको ऑर्डर कर दूंगा, आप किसी और को ऑर्डर कर देंगे, वहाँ से जो है ना वो आपको भेज देगा। फिर मसला ये होता है कि शरीयत में जायज़ या ना जायज़। खैर उलमा ने फिर इसके हीले और रिवाज़ की शक्लें भी बताई हैं, लोगों की आसानी के लिए शक्लें भी बताई हैं। तो मसला ये है कि चीज़ आपके पास नहीं है तो बेचना जायज़ नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि भाई आपने तो ऑर्डर कर दिया उसको, अब मालूम नहीं है कि बाद में वो चीज़ जिस वक्त तक वक्त आएगा 6 महीने 8 महीने 2 महीने के बाद वो चीज़ मौजूद होगी नहीं होगी नहीं मालूम। अनाज उस वक्त तक चावल पैदा होंगे नहीं मालूम है। आपने 10 टन का ऑर्डर दे दिया, पैदा ये यकीन नहीं है कि 10 टन उसमें से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, हो सकता है कि 5 ही निकले। ये भी हो सकता है कि 10 टन निकले लेकिन निकलने के बाद वो महफूज रहे, हो सकता है कि कीड़े खा लें उसको, हो सकता है कि किसी ना कोई आफत आ गई और जो है ना वो कोई चोरी हो गया या कुछ हो गया, कोई मुसीबत और परेशानी आ गई। तो जो चीज़ आदमी की मिल्कियत में मौजूद नहीं होती है, जिसका वजूद नहीं होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वैसे मना फरमाया। उसूल और ज़ाबता ये है, इसी उसूल की बुनियाद पर उलमा इकराम मौजूदा ज़माने में फिर अहकाम बतलाते हैं। उलमा के ऊपर इल्ज़ाम होता है कि ये ना जाए ये ना जाए ये ना जाए, अल्लाह के नबी ने ये उसूल बयान फरमाए हैं तो इस बुनियाद पर ये हुक्म बयान किया जाता है, क्योंकि उसका जो मफसरा होता है और बाद में जो नतायज सामने आते हैं, जो खराबियां सामने आती हैं, जो लड़ाइयाँ और झगड़े सामने आते हैं, तो फिर वो बड़े होते हैं फिर उससे ज़्यादा वक्ती तौर पर उस बैग के मुकाबले में उसका जो नतीजा होता है, जो मफसरा होता है, बहुत बड़ा होता है। इसलिए शरीयत ने मना कर दिया। और आज के ज़माने में ये कारोबार की शक्लें आलमी हैं, अगर आप देखेंगे तो नुकसान होगा तो आलमी होगा, फितना होगा तो आलमी फितना होगा, लोगों की परेशानियाँ जो होंगी तो बहुत बड़ी होंगी। हुक्म तो एक छोटा सा है बज़ाहिर देखने में, लेकिन नतीजा उसका बहुत बड़ा है। तो ये असलन बै जो बै सलम है वो ना जायज़ है उसूलन देखा जाए तो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में देखा कि सहाबा इकराम उमूमन यही कर रहे हैं, और अगर पहले से ऑर्डर न दिया जाए तो लोगों के लिए हरज और दुश्वारी है इंतजाम करने में, उसके धोने में, उसकी ज़राअत करने में, और उसके बाद में इंतजाम करने में बड़ी दुश्वारियाँ और परेशानियाँ हैं, और ज़माने दराज से सिलसिला चला आ रहा है उनका। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी करने के लिए इस बै को उससे मुस्तस्ना कर दिया और फरमाया कि बै सलम जायज़। लेकिन शर्त ये जिक्र फरमा दी कि भाई इसके मिकदार मालूम होना चाहिए, चीज़ का वस्त मालूम होना चाहिए, कैफियत मालूम होनी चाहिए, और किसी किस्म की जहालत न पाई जाए, किसी किस्म का इबाम ना हो उसके अंदर, पोशीदगी और पेचीदगी ना हो। तो शरीयत का मिजाज ये है कि लोगों की सहूलत को शरीयत जो है ना पेश नज़र रखती है। तो अमूम बलवा की वजह से इस चीज़ को असल में मैं समझा रहा था, शरीयत में इस तरह की बहुत सी मिसालें और नज़ीरें मिलती हैं कि लोगों की आसानी के लिए और लोगों को तंगी से बचाने के लिए शरीयत जो है ना बहुत से अहकाम में तफ़ीक कर देती है और गुंजाइश रखती है। तो यहाँ पर भी ये जो अल्कोहल है अगर देखा जाए तो इसका उमूम इतना ज़्यादा है और इतनी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, इतने मकासद के लिए इस्तेमाल होती है कि बचना मुश्किल है। आप अगर देखा जाए तो यानी हमारी मेडिसिन लाइन में अगर आप देखेंगे शायद ही कोई दवा ऐसी हो जिसमें किसी न किसी दर्द में न मिलाया जाता हो। यानी कहने वाले कहते हैं कि भाई बगैर उसके चीज़ का बनना मुश्किल है, या बन भी जाए तो रहना मुश्किल है। फिर अल्कोहल से उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसमें थिकनेस पैदा किया जाता है और फिर मकासद के लिए इस्तेमाल उसको किया जाता है, उसके बगैर उस शक्ल में लाना बड़ा मुश्किल होता है। दो दो साल, ढाई ढाई साल, तीन तीन साल जो उसकी लिमिट लिखी हुई होती है कि भाई एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, वो अल्कोहल की बदौलत होती है। वो जाहिर सी बात है कि आवाम का रुझू इतना है और खरीदो फरोख्त इतनी है और ज़रूरत इतनी है कि उनको इतनी मकदार में बनाना भी पड़ता है। अब अगर मना कर दिया जाए तो लोगों के लिए बड़ी मसाइल है, लोगों के लिए परेशानियाँ हैं। ऐसे ही कई खाने वाली चीज़ों में जो है ना अल्कोहल मिलाई जाती है जिसको हमको पता नहीं है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हुक्म दे दिया जाए कि अल्कोहल नाजायज़ है तो उम्मत के लिए बड़ी परेशानी है। यानी हज़ारों किस्म के बिस्किट आपके लिए मना हो जाएंगे, फिर हज़ारों किस्म की दवाएँ आपके लिए मना हो जाएंगी, फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बुनियाद पर हम उलमा ने फिर गौर फिक्र करके ये गुंजाइश दी है कि भाई अमूम बलवा की वजह से अगर चूँकि ये अल्कोहल नाजायज़ होती है लेकिन लोगों के इब्तला की वजह से और ज़रूरत की वजह से हुकुम में तकलीफ कर दी जाती है तो इसका इस्तेमाल आज के ज़माने में जायज़ है। तो इसलिए ये परफ्यूम है इसी बुनियाद पर जो है ना लिखा है कि भाई ये इसका इस्तेमाल करना जायज़ है। चॉकलेट्स में अल्कोहल मिलाई जा रही है उसका इस्तेमाल करना जायज़ है। बिस्किट्स हैं वो बिस्किटों में वो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, आइसक्रीम्स में इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, शरीयत में तकलीफ दी गई। तो इसका पस मंज़र असल में ये है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन शरब अल-खमर फी दुनिया थुम्मा लम यतुब मिन्हा हुरिमा फी अल-आखिरा, जो शख्स दुनिया में खमर से और शराब से यानी शराब को पी लेता है और उससे तौबा नहीं करता है तो आखिरत में उसको महरूम कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरी रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, वो फरमाते हैं कि इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतिया लैलत उसरिया बिही बिलिया बिकदअईन मिन खमर व लबन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसरा की रात में मकाम इलिया में दो प्याले लाए गए, यानी मुल्क शाम में बैतुल मुक़द्दस के पास, बैतुल मक़दिस के पास, मुक़द्दस और मक़दिस दोनों तरफ पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर जो है ना दो प्याले लाए गए, एक शराब का था और एक दूध का था। फ़नज़र इलैहिमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को देखा, थुम्मा अख़ज़ अल-लबना, फिर आपने दूध को ले लिया। फ़क़ाला जिब्राईल, तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाका लिल-फ़ितरा, तमाम तारीफ़ों सल्लाह के लिए जिसने आपको फितरत की हिदायत अदा फरमाई। वलव अखज़्त अल-खमर ग़वत उम्मतुका, और अगर आप शराब को ले लेते हैं तो आपकी उम्मत जो है ना वो गुमराह हो जाती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मंशा यही है कि भाई खमर हराम है, इस वाक़े से यही बतलाना मकसद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाक़िया मकाम इसरा में यानी इसरा की रात में पेश आया था वो यही था कि ये शराब, ये आपके सामने ये चीज़ें पेश की गई थी तो आपने दूध ले लिया और शराब को छोड़ दिया। या तो इस वजह से कि शराब पहले से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पीते थे, या इस वजह से कि आइंदा शराब हराम होने वाली थी। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के साथ ये सिलसिला रखते हैं कि भाई आइंदा जो चीज़ें शरीयत में मना करना होता है तो उनसे महरूम भी रखते हैं, यानी उनसे अल्लाह तबारक व तआला बचाए रखते हैं उनको, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के खास शामिल हाल होती है। तो इस बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को छोड़ दिया और दूध के ले लिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जो है ना उस मौके पर तारीफ़ फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाका लिल-फ़ितरा, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने आपको फितरत की हिदायत अदा फरमाई। यानी यहाँ पर दूध को फितरत करार दिया गया और शराब को फितरत के खिलाफ करार दिया गया। इससे मालूम ही होगा कि जो शराब पीने वाले हैं फितरत के खिलाफ काम करते हैं, और इसी वजह से शराब पीने के बाद आप देखें आदमी का हर काम उल्टा होता है। जो अक्ल सलीम रखने वाला है तो उस अक्ल के बिल्कुल खिलाफ में आदमी काम करता है, और दूध को फितरत के आयन मुताबिक करार दिया गया। उसकी वजह यही है कि यानी ये चीज़ें इंसान की रूहानी तकवीत का ज़रिया बनती हैं, और शराब इंसान की रूहानी तरक्की के लिए, रूहानी तरक्की और अल्लाह तबारक यानी दीन इस्लाम के और हक़ के ये ख़िलाफ़ है। यहाँ पर फितरत से मुराद असलम तो इस्लाम ही है। उलमा ने जो आम तौर पर शुरा ने इसकी जो तारीफ़ फरमाई है वो यही है कि जो इसकी तशरीह फरमाई है वो यह है कि फितरत से मुराद दीन इस्लाम है, और दीन पर जो है ना वो मुस्तकीम होना ये माना मुराद है। तो मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस्लाम की यानी इस्लाम के इस हुक्म की हिदायत अदा फरमाई है कि आप शराब से बचिए, और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इब्राहिम ने फितरत के आयन मुताबिक करार दिया। बहरहाल अल्लाह के नबी का यहाँ शराब को छोड़ देना और हज़रत इब्राहिम अमीन का उस दुनिया पर यह बशारत देना कि उम्मत इससे बच गई वरना फिर उम्मत गुमराह हो जाती, यानी बहुत बड़ी गुमराही में मुबतला हो जाती, ये इस बात की अलामत है कि भाई शराब ये बहुत ही सख्त जो है ना ममनू चीज़ें शरीयत के अंदर इससे बचने का इहतमाम करना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर इसी को बयान कर रहे हैं। इससे उलमा ने एक बात ये भी लिखी है कि अम्बिया के आमाल का या अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के कुलूब का एक ख़ास किस्म का ताल्लुक उम्मत के साथ पाया जाता है। यहाँ पर जाहिर सी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मान लीजिए कि शराब ले लेते हैं, हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि उम्मत गुमराह हो जाती है। हालांकि उम्मत के गुमराह होने के क्या ताल्लुक, उलमा ने लिखा है कि एक रूहानी ताल्लुक होता है उम्मतों के साथ अंबिया का, उनके फैज़ का, कि उसी का फैज़ है कि आज उम्मत गुमराही से बची हुई है मजमू एतबार से शराब के पीने से। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस लेने की बरकत है जो आप ने मकाम इसरा में जो है ना उस दूध को ले लिया था, तो उसकी वजह से उम्मत जो है ना इस बड़ी गुमराही से बची हुई है। तो अम्बिया का रूहानी जो फैज़ है वो उम्मतों के साथ कायम होता है, अम्बिया का रूहानी फैज़ उम्मत के दिलों के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो ताल्लुक़ होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके असरात रखते हैं और उसी का असर यही है। उसके बाद तीसरी रिवायत है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है من أسرار الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر وتقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد. قیامت کی شان علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ جہالت ظاہر ہو جائے گی، ويقل العلم علم کم ہو جائے گا، ويظهر الزنا زنا ظاہر ہو جائے گا، وتشرب الخمر شراب پی جانے لگے گی، وتقل الرجال آدمی کم ہو جائیں گے، ويكثر النساء عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتی یکون لخمسین امرأة قیمهن واحد رجل واحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا جو سرپرست اور نگران ہوگا وہ ایک ہی آدمی ہوگا۔ کئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے یہاں پر علامت ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک ہے شراب کی کثرت جو اس میں ذکر کیا گیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اسی کو بیان کرنا بھی چاہتے ہیں۔ شراب کی کثرت یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ قیامت کی علامتیں بہت ساری ہیں، کچھ علامات صغرا ہیں، کچھ علامات کبرا ہیں، صغرا ہیں کبرا ہیں۔ علماء نے لکھا ہے مولود احوال کو دیکھتے ہوئے کہ وہ علامات صغرا تقریباً ظاہر ہو گئی، علامات کبرا کا آنا باقی ہے، یعنی جتنے برے احوال، لوگوں کی بری صفات، زمانے میں پائی جانے والی جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی پوری کی پوری پائی جاتی ہیں آج کے زمانے میں۔ بڑی بڑی جو علامات ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ہے، دجال کا نکلنا ہے، زمین سے جانور کا نکلنا ہے، لوگوں سے باتیں کرنا ہے، سورت کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو بڑی بڑی علامتیں ہیں یہ علامتیں ظاہر ہونا باقی ہیں، باقی علامتیں جو ہے نا اس امت میں ظاہر ہو گئی۔ اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی یہی صورت حال ہے، ائیں ظہر الجہل، جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ اتنی بڑی جہالت آج امت میں پائی جاتی ہے بیان نہیں کر سکتے۔ آج کے زمانے میں چند جو ہے نام نمود علم رکھنے والے، انٹرنیٹ سے علم حاصل کرنے والے کہتے ہیں کہ آج علم جو ہے نا وہ آسان ہو گیا، ہمارے علم پھیل گیا، علم کا لینا آسان ہو گیا، پہلے جہالت تھی اس کی وجہ سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا، اندھی تقلید اس وجہ سے کیا کرتے تھے، اندھی تقلید اس وجہ سے کرتے تھے کہ علم نہیں تھا۔ حیرت ہوتی ہے ان کے جملوں پر، ان لوگوں کی ان باتوں پر کہ اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کیسے کہہ دیتے ہیں بھائی۔ جن کتابوں کا، جن اماموں کا حوالہ دیتے ہیں ان کی ایک کتاب بھی پڑھنا ایسے شخص کے لیے جو ہے نا زندگی گزر جاتی ہے، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی ہیں ایسے مصنفین نے، یہ بڑے بڑے جو حضرات ہیں، سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں حضرات، ان کے پاس جو علم تھا علم کا سمندر موجود تھا۔ حدیثیں ہمارے پاس 10,000 ہیں، اسی میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ علم بہت زیادہ ان کو مل گیا۔ بخاری مل گئی تو بہت زیادہ علم ہم کو مل گیا۔ امام بخاری نے 300,000 حدیثوں میں سے 10,000 حدیثیں، 7,000 حدیثیں لی ہیں یہاں پر، اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ ہے۔ پہلے زمانے میں جہالت تھی اس وجہ سے اندھی تقلید کی جاتی تھی، یعنی 300,000 حدیثیں وہاں تھی، اندھی تقلید وہ کر رہے تھے، اور ہم کو 7,000 300,000 میں سے 7,000 حدیثیں انہوں نے نقل کر دی ہیں، تو اس لیے جو ہے نا ہم بڑے عالم ہو گئے۔ سیدھی سیدھی بات تو یہی نکلی، حیرت ہوتی ہے ان کی جہالت پر۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یعنی جو دقیق علم رکھنے والے، گہرا علم رکھنے والے علماء اکرام ہیں، آہستہ آہستہ وہ امت سے ختم ہو رہے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں آہستہ آہستہ جب جا رہے ہیں تو ان کا کوئی بدل نہیں ہے آج۔ جتنے شیوخ الحدیث ہیں جن کی وفاتیں ہوئی ہیں گزشتہ پانچ سال میں 10 سال میں آپ غور کریں، ان کا کوئی بدل نہیں ملا۔ دارالعلوم دیوبند کے کئی شیخ الحدیث سے لے گئے، ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ دارالعلوم میں آپ ویسے اساتذہ نہیں رہے جو پہلے تھے، ویسے پڑھانے والے نہیں ہیں اور ویسے علم رکھنے والے نہیں ہیں۔ پاکستان میں ایسے بڑے بڑے مدارس کے بڑے بڑے علماء چلے گئے، اب ان کا بدل نہیں ہے۔ اب سال دو سال میں پانچ سال کے آپ علماء اکرام کو دیکھ رہے ہیں، اتنے گہرا علم رکھنے والے جید علماء ہیں، اب اگر امت میں ڈھونڈیں گے ویسے علماء کو تو آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ علم کے قیامت کے قریب ختم ہو جانے کی علامت یہ ہوگی، علم جو کم ہو جائے گا تو اس طرح نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے علم کو ختم کر دیں گے، بلا دیں گے، اس طرح ہوگا کہ آہستہ آہستہ افراد کم ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر جو ہیں انہیں کو غنیمت جان لے آج بھی، پھر ان کو غنیمت جان لے۔ تو یہ ایک علامت جو ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ من أسرار الساعة أن يظهر الجهل، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جہالت ظاہر ہو جائے گی، وہ يقل العلم، اور علم جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے آج دیکھیں صحیح بخاری میں کتاب العلم میں بھی اسی مضمون کی ایک روایت امام بخاری نے ذکر فرمائی ہے، آگے وہ یہ اس میں یہ ہے کہ بھائی علم کم ہو جائے گا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، کہ لوگ جو ہے نا جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ حدیث میں اور بھی آگے کہ اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی ہے، جاہلی سردار بنے ہوئے ہیں، پھر लोगों के जो रहनुमा बने हुए हैं, तो कोई इंजीनियर बना हुआ है, कोई फला बना हुआ है, कोई फला बना हुआ है, जितने फितने सर उभारे हुए हैं उनमें यही शक्ल है पूरे के पूरे, यही कहनी कोई दुनिया भी लाइन से ताल्लुक रखने वाले हैं। गौरी फितना है, उसका बानी कौन है आप देख लें, यानी जिनको वही आती है जो अम्बिया से भी और रसूल से भी बड़े हैं, गौर शाही जो फितना है कौन है, दाढ़ी कटी हुई है, सर पे टोपी नहीं है, इस्लामी लिबास नहीं है, इस्लामी वजह पता नहीं है, फला है फला, यानी किसी भी एतबार से अगर आप देखेंगे, यानी बगैर जाने पहचाने के अगर आप देखेंगे तो ये भी पता नहीं चलेगा उसको कि ये मुसलमान है या नहीं, और इनको वही आ रही है और नबियों से उनका दर्जा बढ़ा हुआ है, अल्लाह ताला से हम कलामी हो रही है, खुद कहते हैं उनकी अपनी जबान में नकल कर रहा हूँ हजरात के सामने, और उम्मत का बहुत बड़ा तबका उनसे मुतासर है। गामिरी फितना है, ठीक है, पैरिस में रहते हैं जावेद गामिरी साहब, और वहाँ पर और भी फितने हैं बहुत सारे, उनका भी बहुत बड़ा, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उनके नज़रियात और अफकार पाए जाते हैं, बोलने का अल्लाह तबारक व तआला ने सलीका दिया है, जबान अच्छी है, अल्फाज अच्छे मुंतखब करते हैं बोलने में, सलीका और ढंग है उनके पास बात को पेश करने का, उम्मत में बहुत बड़ी गुमराही फैला रहे हैं, इतने ही अफकार कुरान और सुन्नत, यानी उनके जो नज़रियात हैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं, और देखें आप अगर आप सूरत हाल उनकी देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे हैं, यानी कोई जो है ना कुरान और सुन्नत में जो उलमा के औलिया के औसाफ बयान किए गए कोई वस्फ बज़ाहिर देखने में नहीं आता, नबी की जो सुन्नतें हैं सरासर छूटती हुई नज़र आती हैं, इस्लाम से इस्लामिया से उनका यानी जाहिर में बगैर इल्म के अगर आप देखेंगे तो कोई पता नहीं चलता कि भाई मुसलमान है आदमी नहीं, हो सकता है कोई गोरा हो सकता है कि मुसलमान होना हो, आदमी ही तसव्वुर करेगा, मालूम अगर नहीं होगा देखेगा पता ही नहीं चलेगा कि मुसलमान भी है या नहीं है, तो बहरहाल होगा यही कि भाई लोग जाहिर अब सरदार बने हुए हैं उम्मत के, इंजीनियर साहब हैं उम्मत के सरदार बने हुए हैं, लाखों की तादाद में उनकी फैन फॉलोइंग होते हैं, लोग फॉलो करते हैं नज़र आते हैं और गुमराह हो रहे हैं लोग, तो ये अलामत है क़यामत की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फिर आगे फरमाया कि जिना जाहिर हो जाएगा, जिना की भी कसरत हो जाएगी, यानी कसरत से जिना होने लगेंगे तो उसकी भी बहुत सारी, यानी अमरीका में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि जिस तरह की सूरत हाल यहाँ पर, गंगा माहौल है यहाँ तो बिल्कुल, फिर भी हिंदुस्तान हमारे अपने पास बचा हुआ है थोड़ा सा, सूरत हाल जो है ना आदमी को वहाँ तो थोड़ा सा गनीमत नज़र आती है, लेकिन यहाँ इंतहाई हजरत इसी वजह से गालिबा हजरत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ पर आए थे एक मरतबा, तो उनका एक नज़र एक मकोला मैंने उनकी एक बात मैंने सुनी थी, वो ये कह गए थे आने पर कि भाई यहाँ तो कदम कदम पर विलायत बैठ रही है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ, कदम कदम पर विलायत बैठ रही है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से, कि इंसान के लिए गुमराही और इंसान के गुमराह होने के असबाब इतने ज़्यादा हैं, गुनाहों का जो माहौल है उससे आदमी अपने आप को बचा ले, कदम कदम पर विलायत उसके लिए मिल रही है, माहौल से नज़रों से अपने आप को चुरा ले, कदम कदम पर अल्लाह की तरफ से विलायत बैठ रही है, ये सूरत हाल है यहाँ की, और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है, यानी इसके असरात, ये इस तरह की बेहूदियाँ, इस तरह की बेहयाइयाँ, इस तरह का नंगापन आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है, तो फरमाया कि वह जिना जिना भी जाहिर हो जाएगा, फिर आगे फरमाया कि वतुशरब अल-खम्र, शराब पी जाने लगेगी, यानी शराब की कसरत भी हो जाएगी, ये भी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है उम्मत के अंदर, नौजवानों में जो नशे की आदत हो रही है, हैरत करेंगे आप लोगों को अहवाल को जानने के बाद, यहाँ मस्जिद में आएंगे नमाज पढ़ेंगे और पता नहीं चलेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ अगर आप उनकी देखेंगे, मुलाकातें करेंगे तो पता चलेगा, बहुत बड़ा तबका उम्मत का और नौजवानों का शराब से मुतासर है, तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही इल्म सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और इस तरह की जो बेहूदियाँ हैं और इस तरह की जो खराबियाँ हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इससे हिफाजत फरमाए।